चतुर्थ स्कंद 31वां अध्याय और श्लोक संख्या है 14। आप मेरे पीछे इसको बोलिएगा। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्या यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्या यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्या। एक बार प्रभु जी में से कोई बोल दें और फिर एक बार माता जी में से, थोड़ा समय बच जाएगा तो और चर्चा कर सकते हैं। जाओ यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्या निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्या यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा तथैव सर्वाहरणमुच्छेद्या। धन्यवाद। इसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की यथा, जिस प्रकार तरो वृक्ष की मूल जड़ निषेचनेन सींचने से तृप्यन्ति संतुष्ट हो जाते हैं, तथा इसके स्कंद तना भुज शाखाएं उपशाखा टहनियाँ प्राण प्राणवायु उपहारात भोजन करने से च तथा यथा जिस तरह इंद्रियाणाम इंद्रियों को तथा एव उसी तरह सर्व सभी देवताओं की अर्हणम पूजा अच्युत भगवान की इज्जा पूजा। इसका अनुवाद और तात्पर्य, जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट होती हैं और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य सुनिए, कभी कभी लोग पूछते हैं कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन देवताओं को छोड़कर केवल श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन क्यों करता है। इसका उत्तर इस श्लोक में दिया हुआ है। वृक्ष की जड़ को सींचने का उदाहरण अत्यंत सटीक है। भगवद्गीता 15.1 में कहा जाता है, ऊर्ध्वमूल अधःशाखा, यह दृश्य जगत नीचे की ओर विस्तृत है, इसका मूल भगवान है। जैसा कि भगवान स्वयं भगवद्गीता में 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में पुष्टि करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक संसारों का स्रोत हूँ। श्री कृष्ण सभी वस्तुओं के मूल हैं, अतः कृष्ण सेवा का अर्थ है सभी देवताओं की स्वतः सेवा हो जाना। कभी कभी ये तर्क दिया जाता है कि सफलता के लिए कर्म तथा ज्ञान में भक्ति के मिश्रण की और कभी कभी भक्ति में कर्म तथा ज्ञान के मिश्रण की आवश्यकता पड़ती है। वास्तविकता यह है कि यद्यपि ज्ञान भक्ति के बिना कभी सफल नहीं हो सकते, भक्ति कर्म तथा ज्ञान की सहायता नहीं मांगती। वास्तव में जैसा श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, अन्याभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, शुद्ध भक्ति को कर्म तथा ज्ञान के स्पर्श से दूषित नहीं किया जाना चाहिए। आधुनिक समाज अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्यों, मानवतावादी कार्यों इत्यादि में व्यस्त है, किंतु लोग यह नहीं समझते कि जब तक भगवान कृष्ण को इन सारे कार्यों का केंद्र बिंदु नहीं बनाया जाता, ये कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकते। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण तथा देवता रूपी उनके शरीर के विभिन्न अंगों की पूजा करने में क्या हानि है, तो इसका उत्तर भी इस श्लोक में प्राप्त है। बात यह है कि उदर को भोजन देने से इंद्रियां स्वतः संतुष्ट हो जाती हैं। यदि कोई अपने नेत्रों या कानों को अलग से भोजन दे तो उसका परिणाम बुरा होगा। केवल उदर को भोजन देकर हम समस्त इंद्रियों को तुष्ट कर देते हैं। प्रत्येक इंद्रिय की अलग अलग सेवा कर पाना न तो आवश्यक है और न ही संभव है। निष्कर्ष यह है कि केवल कृष्ण सेवा से सब कुछ पूरा हो जाता है। जैसा चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में पुष्टि की गई है, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। यदि मनुष्य भगवान की भक्ति में लगा रहे तो अन्य सारे कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। हरे कृष्ण। तो चतुर्थ स्कंद के अध्याय 31 में ये 14वां श्लोक श्री नारद मुनि के द्वारा बोला गया। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। ये चतुर्थ स्कंद जो है वो श्रीमद् भागवतम के 10 लक्षणों में एक लक्षण है, उसका नाम है विसर्ग। अतः सर्ग विसर्ग स्थानन पोषण उतया मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रय, ये 10 लक्षणों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है, जिसमें कि पहले 3 स्कंद जो हैं उनको सर्ग बताया जाता है और चौथे स्कंद से विसर्ग शुरू होता है। तो ये विसर्ग का वर्णन है। विसर्ग में महाराज प्राचीन बरेही को नारद मुनि ने बहुत सुंदर पुरंजनोपाख्यान का उपदेश किया और उसके बाद प्राचीन भरी महाराज अपने पुत्रों को, प्रचेताओं को राज्य देकर तपस्या के लिए चले गए और उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। प्रचेता गणों को भी आज्ञा दी कि पहले आप तप करो और उसके बाद सृष्टि बढ़ाना। तो प्रचेता गण तप करने के लिए जब निकले तो उनको शिव जी का दर्शन हुआ। शिव जी का दर्शन हुआ, वहाँ से रुद्र गीत प्राप्त हुआ और उस रुद्र गीत का गायन करके 10,000 वर्षों तक उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। नारायण उनके सामने प्रकट हुए और उनके आपस के सहयोग के कारण उनसे श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उनको अपना दर्शन प्रदान किया। और फिर उसके बाद कृपा करके बोले कि अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए और जब आयु समाप्त होने को होगी तब आप दोबारा से भजन में लग जाइएगा। तो यहाँ पर प्रचेतागण घर वापस जाके हजारों वर्षों तक उन्होंने गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन किया और बाद में अब इनको थोड़ा सा ये बात लग रही है कि अब हमें भजन में फिर लगना चाहिए वापस। तो यहाँ पर नारद मुनि की इनसे भेंट हुई है और नारद मुनि से इन्होंने वही बात पूछी है कि महाराज हम इतना समय हो गया हमें गृहस्थ आश्रम, हमें ऐसा लग रहा है भगवान का दर्शन हमने किया, जो उनसे हमें प्राप्त हुआ वो अब हम खोते जा रहे हैं, हम इसको हम दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब भजन में दोबारा लगना चाहते हैं, तो आप कृपया करके कुछ उपदेश दीजिए। तो उपदेश के माध्यम से ये श्लोक जो है नारद मुनि ने उद्धृत किया। ये इतना प्रसिद्ध श्लोक है कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ एक प्रचार की संस्था है और प्रचार करने में किस प्रकार से जीवों को इस बात के लिए मनाया जाए कि केवल कृष्ण भक्ति ही करनी चाहिए, कृष्ण ही मूल हैं हर वस्तु के और हर व्यक्ति के, उसके लिए श्लोक बड़ा उपयोगी है। यथा तरोर मूल निशिचनेन, जैसे पेड़ के वृक्ष की जड़ में पानी दिया जाता है और उदर में भोजन दिया जाता है, उसी प्रकार से कृष्ण को संतुष्ट कर दो तो निश्चित रूप से यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, अगर कृष्ण संतुष्ट हो गए तो सर्व संतुष्ट हो जाएगा। अब यहां पर श्रील प्रभुपाद जी एक दो भगवद गीता के श्लोकों से इस बात का निरूपण कर रहे हैं कि कृष्ण सब चीज के मूल हैं। जैसे बोला ऊर्ध्व मूल अधःशाखा और फिर बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभव। तो पहले तो इस बात को स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि कृष्ण मूल कैसे हैं सिद्धांत के रूप में, फिर उसके बाद कृष्ण को संतुष्ट कैसे किया जाए ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो मूल कैसे है इस बात को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आप श्रीमद् भागवतम उठाइए और श्रीमद् भागवतम का पहला ही श्लोक देख लीजिए, जन्मादिश्चतोन्वयात इतरतश्चर्थेषु अभिज्ञा स्वराट। इसकी व्याख्या में जो वर्णन है, बोले इस जगत की पालन सृष्टि और संहार केवल श्री कृष्ण के संकल्प मात्र से हो जाता है। ऐसी विलक्षण सृष्टि है कि श्री कृष्ण को किसी बाहर से किसी सहायता की, किसी उपादान द्रव्य की आवश्यकता नहीं है कि कोई चीज वो अलग से लें और फिर उसको उसकी सहायता लेकर फिर सृष्टि की रचना करें। यह विलक्षणता है सृष्टि की, एकला अकेले ही ठाकुर जी ऐसा कर देते हैं। देखो लोक व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि किसी भी वस्तु के निर्माण में हमें व्यक्ति की भी आवश्यकता है और वस्तु की भी आवश्यकता है। इस बात का उदाहरण दिया गया है, मान लीजिए जैसे कुम्हार है घड़ा बनाता है, अब घड़ा बनाने में दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो मिट्टी की आवश्यकता है जिससे घड़ा बनेगा और कुम्हार की आवश्यकता है जो घड़ा बनाएगा। ये लोक व्यवहार भौतिक जगत की बात है। जगत में अब वो मिट्टी अगर उपलब्ध है, कुम्हार अगर उपलब्ध है तो बहुत आसानी से मिट्टी को पानी में भिगो के उसको सान कर चाक पर रख देगा और चाक घुमाएगा धीरे धीरे और जैसा आकार देना चाहता है, हाँ, बड़ा घड़ा बनाना चाहता है, चाहे सुराही बनाना चाहता है, कुल्लड़ बनाना चाहता है, हांडी बनाना चाहता है, जैसा जैसा आकार देता जाएगा वो घड़ा वो हांडी वैसे बन जाएगी और उसको आराम से उतार लेगा। तो मिट्टी की भी आवश्यकता है और कुम्हार की भी आवश्यकता है। देखिए, अगर मिट्टी ना हो, कुम्हार उपलब्ध हो, चाक उपलब्ध हो, तो भी घड़ा नहीं बनेगा। अगर मिट्टी उपलब्ध है, चाक उपलब्ध है, कुम्हार उपलब्ध नहीं है, तो भी घड़ा नहीं बनेगा। ये भौतिक जगत का लक्षण है कि यहां पर उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों की आवश्यकता है। परंतु श्री भगवान के साथ ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण इस जगत की सृष्टि में अभिन्न रूप से निमित्तो उपादान कारण के रूप में विद्यमान है, अभिन्न रूप से विद्यमान है। कैसे? देखो, श्री कृष्ण संकल्प मात्र से सृष्टि कर देते हैं, संकल्प करते हैं, यानी कि संकल्प किसका धर्म है जानते हैं? संकल्प धर्म है मन का। मन का धर्म संकल्प और विकल्प करना है। तो श्री कृष्ण अगर संकल्प कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ठाकुर जी मन वाले हैं, उनके पास मन है। और मन वाले कब होंगे? जब देह और इंद्रिय वाले होंगे, क्योंकि मन जो है वो इंद्रियों का राजा है। देह वाले और इंद्रिय वाले हैं तभी तो मन वाले हैं। परंतु थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि ठाकुर जी की मन और इंद्रियां ये सारी की सारी, जैसे भागवत के महात्म्य में ही पहला जो श्लोक उद्धृत किया गया है शुरुआत में ही, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, सच्चिदानंद रूपाय, जो स्वरूप जो है वो कैसा है? सच्चिदानंदमय विग्रह है। असत अचित और निरानंद नहीं है, इस भौतिक वस्तुओं से बना हुआ नहीं है। तो मन भी सच्चिदानंद है, इंद्रियां भी सच्चिदानंद हैं और विग्रह भी सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद होने के कारण अब ठाकुर जी ने संकल्प किया तो जगत की सृष्टि हुई कैसे? देखिए, निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण उसे कहते हैं जो व्यक्ति बनाने वाला है, और उपादान कहते हैं जो वस्तुएं होती हैं। तो संकल्प सृष्टि की रचना में ठाकुर जी का निमित्त कारण बना, और उपादान के रूप में भूमि राप अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि मन बुद्धि अहंकार ये उपादान कारण के रूप में विद्यमान है। इन सब को जब ठाकुर जी ये अलग से लेते नहीं है, खुद ही है इसी रूप में भगवान खुद ही विद्यमान है। कैसे हैं? एक जगह उद्धृत किया गया इस बात को कि जे ही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई कोई सहाय न दूजा। ये सृष्टि बनाई ठाकुर जी ने, त्रिविध त्रिगुणाकार सृष्टि बनाई है, परंतु कैसे बनाई है? कोई सहाय न दूजा, दूसरा सहायक नहीं लिया है ठाकुर जी ने, अपने से ही संकल्प उनका निमित्त बन गया है। और पृथ्वी जलवायु आकाश के रूप में भी स्वयं ही विद्यमान है, क्योंकि उन्हीं की प्रकृति है, अपने को ही विस्तार किए हैं। तो इन सब को मिला के बहुत आसानी से सृष्टि की रचना कर दी है। निमित्त उपादान कारण के रूप में केवल श्री कृष्ण ही अपने आप में ही विद्यमान है। इस मूलभूत सिद्धांत को समझने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। ये बात अगर समझ में आ जाएगी तो फिर बिल्कुल आसानी से आप पूर्ण रूपेण शरणागत हो सकते हैं कि जब ये सब कुछ इन्होंने ही किया है, सर्वे सर्वा यही है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत् सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं फिर अपने आप शरणागत हो जाते हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और देखिए, श्रीमद् भागवतम के अन्यत्र अध्यायों में भी, प्रथम स्कंद उठाइए और प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय, प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में श्रीमती कुंती महारानी की स्तुति है। ये बहुत बहुत विशेष बात है कि श्रीमद् भागवतों का जो सिद्धांत है ना, वो भक्तों की स्तुतियों में विद्यमान है। स्तुतियों में विद्यमान होने का कारण ये है कि जब किसी भक्त को भगवान का दर्शन, उनका संभाषण, उनका स्पर्श प्राप्त होता है, अनुभूति जब प्राप्त होती है किसी भक्त को, तो उसके हृदय में छुपे हुए भाव शब्द रूप में प्रकट होते हैं, और वही शब्द रूप में प्रकटे हुए भावों को ही स्तुति कहा जाता है। यद्यपि देखिए, कुंती महारानी इसने स्तुति की प्रथम स्कंद में, आप प्रहलाद महाराज की स्तुति ले लीजिए सप्तम स्कंद में, ध्रुव महाराज जैसे ठाकुर जी का दर्शन हुआ ऐसे वो भी स्तुति कर, तो हर कोई स्तुति करके श्री भगवान की महिमा का ही वर्णन कर रहा है। यही वर्णन कर रहा है, आप योगेश्वर हैं, आप सर्वे सर्वा हैं, आप नियंता हैं, आप सृष्टि के रचयिता हैं, आप पालक हैं, आप संहारक हैं। यही गुणों का वर्णन करके ये सिद्धांत स्थापित किया जा रहा है कि वास्तविकता में ठाकुर जी ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इस सिद्धांत को भक्तों ने ही स्थापित कर दिया अपनी स्तुतियों के अंदर। तो कुंती महारानी देखिए इतना सुंदर बात कह रही हैं, कुंतेवाच अष्टम अध्याय के अंदर, नमस्ते पुरुषम त्वाम आदि ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थिता। ये कुंती महारानी का पहला श्लोक जिसमें उन्होंने अपनी अनुभूति, अपने उद्गार जो हैं अपने मुख से प्रकट किए हैं। वर्णन इस प्रकार से है कि ठाकुर जी द्वारका जाने के लिए रथ पर आरूढ़ हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है और युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। अब ऐसा कोई भी कारण सामने नहीं दिखता कि इंद्रप्रस्थवासी श्री कृष्ण को अपने पास रोक लें, कोई कारण नहीं है उनके पास। परंतु कोई हृदय में ये चाहता भी नहीं है कि श्री कृष्ण हमसे चले जाएं दूर। अब श्री कृष्ण किसी को मिल जाएं तो कौन उनको छोड़ना चाहेगा, बताइए। इतने सुंदर, इतना माधुर्य, इतना ललित गति विलास, हाँ भीष्म पितामह तो ऐसी वाणी बोल रहे हैं, शैया पर लेटे हुए हैं लेकिन रासलीला की बात कर रहे हैं। ललित गति विलास वलगुहासन, शैया पर लेटे हुए हैं परंतु उनका चित्त पूरी तरीके से श्री कृष्ण में लगा हुआ है, क्योंकि बाण इतने धसे हैं, जो भी धृतराष्ट्र का अन्न खाया हुआ है दूषित, वो सब खून के रूप में सब बाहर निकल गया। चित्त इतना अब इतना बिल्कुल पवित्र हो गया है कि अब कृष्ण लीला का चिंतन हो रहा है शैया पर लेटे लेटे। तो अब कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि इंद्रप्रस्थवासी श्री कृष्ण को रोकें। अब रोकेंगे तो महास्वार्थी कहे जाएंगे, है सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखते हो। इतना समय हो गया श्री कृष्ण को द्वारका से दूर रहे, हाँ क्या वहाँ के परिकर उनके दर्शन के लिए, उनके संभाषण के लिए, उनके उनसे बातचीत करने के लिए क्या नहीं तरस रहे होंगे। अब ऐसा अगर कह दें तो स्वार्थी कहे जाएंगे, इसलिए कोई किसी की हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। ऐसे में हिम्मत की है कुंती महारानी ने और अंतःपुर से दौड़कर आई हैं, और कृष्ण जो हैं, कृष्ण रथ पर आरूढ़ हैं और उनसे कह रही हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहा है, पहले ही शब्द नमस्ते पुरुषम त्वाम आदीश्वरम प्रकृते परम। अब कृष्ण देखे कि कुंती महारानी प्रणाम कर रही हैं मुझको। अब रिश्ते में तो बुआ लगती हैं और कृष्ण भतीजा लगते हैं, और पहले हमेशा ऐसा हुआ करता था कि कृष्ण आके ही चरणों में प्रणाम करते थे बुआ जी के, कुंती महारानी के, और कुंती महारानी आशीर्वाद देती थी। आज तो उल्टी बात हो रही है, कुंती महारानी आके प्रणाम कर रही हैं, तो कृष्ण बोले कि बुआ जी ये क्या हो रहा है आज, पहले तो हम प्रणाम करते थे, आप आशीर्वाद देती थी, आज तो आप प्रणाम कर रही हैं, हम आपके भतीजे हैं, आप जानती नहीं हैं। तो कुंती महारानी बोलती हैं कि मैं जानती हूँ तुम क्या हो और क्या नहीं हो, अखिल है ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म तुम हो, हा? भतीजा का तो तुम रोल कर रहे हो सर, तो यहां पर मूलभूत सिद्धांत जो बताने का प्रयास किया जा रहा है वो ये है, नमस्य पुरुषम त्वाम आदिशुम प्रकृते परम। बोले आप जो है ना अलक्ष्य से सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थित, आप हर किसी जीव के आप अंदर भी विद्यमान हैं और बाहर भी विद्यमान हैं, आप सारी सृष्टि के मूल हैं आप। ये कुंती महारानी ने इस बात की उद्घोषणा की। यहाँ पर एक प्रश्न उठा है बहुत सुंदर, श्रीधर स्वामी ने भावत दर्शनी के अंदर टीका के अंदर उन्होंने प्रश्न उठाया है कि अंतर बहिर अवस्थिता अगर कहा गया है तो मान ली आपकी बात कि ठाकुर जी अंदर विद्यमान हैं और इंद्रियां हमारी बाहर की तरफ देखती हैं, तो जब बाहर की तरफ देखती हैं तो ठाकुर अंदर विद्यमान है तो देख नहीं पाएंगी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। लेकिन जब ये कहा बहिर्वस्थिता, जब आप बाहर भी विद्यमान हैं तो क्यों नहीं देख पाती, इसका उत्तर अगले श्लोक में दिया है। बोले माया जवनिकाक्षम अज्ञाधोक्ष जव्यम न लक्ष्य से मूढ़ दृशाम नटो नाट्य धरो यथा। बोले आपने अपने आप को माया के पर्दे में छुपा रखा है और माया के पर्दे में छुपाने के कारण जानते क्या हुआ है, जैसे उदाहरण के रूप में बोले एक कठपुतली को नचाने वाला पर्दा के पीछे रहकर कठपुतलियों को अपने हाथ में तारों से बांध लेता है और फिर उसके बाद दर्शकों के सामने जैसे चाहे वैसे नचाता है कठपुतलियों को। अब वो कठपुतलियां ही नाचती हुई रोती हुई हंसती हुई गाती हुई नजर आती हैं और दर्शकों को केवल यही नजर आता है कि कठपुतलियां ही ऐसा कर रही हैं, परंतु वास्तविकता क्या है, वास्तविकता तो ये है कि वो कठपुतलियां कुछ नहीं कर रही हैं, जो पीछे नचाने वाला जो है ना कठपुतलीकार वो वास्तविकता में सारे कर रहा है कार्य कर रहा है। तो वो कार्य करने वाला कठपुतलीकार बोले वो ठाकुर जी आप हो, ये सारा जीव जगत आपके हाथों में तार के रूप में बंधा हुआ है कठपुतलियों के रूप में और जैसे आप नचाना चाहते हो वैसे सारे के सारे नाचते हैं। ये मूलभूत सिद्धांत कि सर्वे सर्वा जगत के सृष्टा पालन संहार करता सारे आप ही हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी और बंदौ तिनके पद कमल सदा जोरी जुगपाणी। जड़ चेतन जग जीव जत, अब ठाकुर जी हर जगह विद्यमान है अभिन्न रूप से, निमित्त कारण के रूप में भी और उपादान कारण के रूप में भी और स्वरूप से भी विद्यमान हैं हर जगह पर, क्योंकि जब मन वाले हैं इंद्रिय वाले हैं देह वाले हैं इसका मतलब स्वरूप तो है ना, स्वरूप के रूप में विद्यमान है। और कैसे विद्यमान है, बोले जड़ के अंदर भी विद्यमान है और चेतन के अंदर भी विद्यमान है, जीवित के अंदर भी विद्यमान है और मरे हुए के अंदर भी विद्यमान है। जीवित में तो सब देखते हैं कि जिसके हृदय में पर आत्मा स्थित है, जो हिल डुल सकता है चल रहा है प्रतिक्रिया कर सकता है ठाकुर जी विद्यमान है, हाँ चेतन के अंदर भी विद्यमान है। अब आप ये पूछोगे जड़ के अंदर कैसे विद्यमान है, है या फिर मरे हुए के अंदर कैसे विद्यमान है। अब जड़ के अंदर कैसे विद्यमान है इसका उदाहरण दिया गया सप्तम स्कंद के अंदर, जहां पर प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यपु का संवाद है। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज से पूछ रहे हैं कि हे प्रहलाद तुम किसके बल पर इतना निरड घूमते हो, मैं त्रिलोकी का सम्राट होने के बाद भी इंद्र जैसे और अग्नि जैसे मेरे सामने थर थर कांपते हैं, परंतु तुम 5 वर्ष का बच्चा मेरे से डरता नहीं है बिल्कुल, किसके बल पर इतना निडर है। तो प्रहलाद महाराज सीधे सीधे बोल दिए कि हरि के बल पर। बोले अच्छा हरि के कहाँ है तेरा हरि, बोले महाराज सर्वत्र विद्यमान है हमें तो दिखता नहीं है। हिरण्यकश्यपु बोल रहे हैं बोले हमें तो दिखता है, बोले महाराज हमारी आंखों में बैठकर देखो सब जगह दिखेगा, हमारी आंखों में नहीं बैठते ना आप दिखे, हम तो सर्वत्र विद्यमान देखते हैं। तो हिरण्यकश्यपु बोले अच्छा सर्वत्र विद्यमान है तो खंभे की तरफ इशारा किए, बोले अच्छा जड़ में भी विद्यमान सर्वत्र तो इस खंभे में भी, बोले है महाराज दिख रहे सामने बैठे हमारे। तो गदा लिए और ऐसा मारे तो खंबा फट गया और नरसिंह देव प्रकट है। अरे नरसिंह देव भगवान की, नरसिंह देव प्रकट है गए सामने। तो जड़ में से निकले कि नहीं निकले? अब वहां थे तो ही तो निकले बाहर, नहीं तो कैसे निकल जाते। एक पंक्ति कही गई है बहुत सुंदर कि ठाकुर जी हर जगह विद्यमान हैं। कैसे? लेकिन प्रकट कब होते हैं? बोले जब व्यक्ति के हृदय में प्रेम होता है तभी प्रकट होते हैं, ऐसे प्रकट नहीं होते। जड़ में भी विद्यमान है, चेतन में भी है, जीवित में भी है, मरे में भी है, परंतु प्रकट जब ही होंगे जब आपके हृदय में प्रेम होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इतनी क्रांतिकारी पंक्ति है ना ये, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र में सब जगह पर समान रूप से विद्यमान है भगवान, समान रूप से। लेकिन प्रकट कब होंगे? जब प्रहलाद जैसा कोई प्रेम से पुकारेगा तब प्रकट होंगे। जब ध्रुव जैसा उनके विरह में जब अश्रुपात करेगा तब ठाकुर प्रकट होंगे सामने। ऐसे प्रकट नहीं होते, हैं विद्यमान लेकिन प्रकट नहीं होंगे। जीवित में हो गए और जड़ में हो गए, चेतन में। अब आप पूछो मरे में कैसे विद्यमान है? मरे में भी विद्यमान है। इसका उदाहरण मिलता है चौथे स्कंद के अंदर। महाराज अंग पहले तो इतने परेशान, बेटा ना आए, बेटा ना आए, बेटा ना आए, और बेटा भयो तो ऐसा बेटा भयो बेन हाँ, ऐसो बेटा भयो 12 वर्ष तक तो ऐसो आचरण करो माने हाँ। तो सबरी जनता देख के बोले यही हमारा आदर्श है, ये बने वो राजा बढ़िया, इसी को फॉलो करना चाहिए। अब 12 वर्ष तो करो माने बहुत अच्छा आचरण, अब बा के बाद ऐसी बा की मती फिरी, ऐसे बाने आचरण करने शुरू करे, कहीं तो अगर निकल जाए ना रास्ता पे और लोगन ने पतो लग जाए भैया बेन बेन आयो बेन, और सबरे घर के अंदर घुस जाए, कोई बाहर ना निकले। बच्चा खेल रहे हो, भाई देखे उठाए कुआं में फेंक दे, देख ना सके काऊ के सुख, ऐसो बेन हा? अब जब वो राजा बनो अंग महाराज ने तो भाई दे दियो राज्य, भैया तू संभाल हम चले। अब वो बैठो जैसी राजगद्दी के ऊपर, बाने सबरे नियम बदल दे, ऐसे नियम बदले न जप होगो राज्य में, न तप होगो, न कोई यज्ञ होगो, किसी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य सबरे बंद हैं, और अपने आप ही भगवान सोच लिया, अपने आप ने मैं हूं भगवान, माने कहीं पढ़ रहे हो मैं भगवान, जो राजा जो है वो भगवान के जैसो हो तो है, माने पढ़ लो कहीं तो अपने आप ही राजा समझ, अपने आप को ही भगवान मान लियो माने। अब संवंते कहे कि भैया हमारी पूजा करो, अब राजगद्दी पे जब से बैठो है तब तो हमारी पूजा करो। तब ऋषि मुनि आए, उसको बहुत प्रेम से समझाया, बोले तू राजा है अच्छी बात है, अपने नियम कानून के अनुसार चल, तेरा काम प्रजा का पालन करना है, छोटा सा राज्य है, पर इतना कर ले आराम से, इसी में खुश रहे। उसकी बात समझ में नहीं आ रही, बोले ना है, लिखो है शास्त्र के अंदर ऐसे राजा भगवान के समान, मैं ही राजा हूँ, मेरी पूजा करो। अब ऋषि ने आ गई गुस्सा, अब इतना समस्या खड़ी है गई ये सामने, और ऋषि ने करी हुंकार, और हुंकार करते ही बेन ने प्राण त्याग दिए अपने, मर गो, केवल हुंकार करते ही प्राण त्याग दिए अपने। अब रानी जो है बेन की माता, अब वो शरीर है ना जलाने दे मेरो बेटा, अब अराजकता फैल गई पूरे राज्य के अंदर, चोर उचक्के बढ़ गए, ऋषि मुनि को वैष्णवों को तो जीनो आराम, खा करें भैया। तो अब वहाँ पर ऋषि मुनि ने एक उपाय सोच, बोले चलो आके शरीर मत के देखें का होता है, तो बाई भुजाए और बाई जंघाए जब मत हो तो एक कालो सो आदमी निकलो, सबन ने पतो आपसी है, बोले तुम तो जाओ भैया, तुम नदी के किनारे रहो, वहीं मांस मच्छी खाइयो, वहीं रहियो आराम से। तब वा के बाद जब दाई भुजाए और दाई जंघा को जब मत हो तो वा में तो निकले पृथु महाराज। आप आश्चर्य करोगे, 24 अवतार ठाकुर के भय है ना, वहां में तो एक अवतार तो मुर्दा में तो भय है, मुर्दा में तो भय कि ना, बेण की बेण का जो शरीर मर गया वही उसी में से ही तो पृथु महाराज का अवतार हुआ है। तो पृथु महाराज अब जब उसके अंदर भीतर नहीं होते तो आते कैसे? तो इसका मतलब क्या है? बोले जड़ में भी विद्यमान है कि नहीं? जड़ में विद्यमान, जड़ में विद्यमान है, चेतन में विद्यमान है, जीवित में विद्यमान है और मरे हुए में भी विद्यमान है। कहने का अर्थ ये है मूलभूत सिद्धांत कि ठाकुर जी सब जगह पर हरि व्यापक सर्वत्र समान है। पर एक बात है समझने वाली, वो ये है कि प्राय वैष्णव समाज के अंदर इस बात में शत प्रतिशत मान्यता है कि ठाकुर जी ही हर चीज के मूल हैं। है कि नहीं मान्यता इस बात की, ठाकुर जी मूल हैं हर बात के, तो लिखा क्यों है फिर इसके अंदर? वही वाली बात हो गई, बोले एक राम एक रावणना, एक बलि एक बामन्ना, बाने बाकी सीए चुराई और बाने बाकी लंक जलाई, तनिक बात की बातन्ना और साधु लिख गए पोथन्ना। पोथन्ना लिख गए इतना बड़ा, जबको पता है सबको लिखी किस लिए? बोले रसा स्वादन के लिए लिखी। जब तक लिख के जनता तक बात नहीं पहुंचेगी तो रसास्वादन कैसे होगा? पता कैसे चलेगा कि भगवान क्या करते हैं, क्यों उतरते हैं नीचे, क्यों ये सृष्टि रचना करते हैं? बोले करुणा के कारण करते हैं बहुत। जब कृष्ण का हृदय बहुत द्रवित हो जाता है ना जीवों को देख कर कि ये इतना कष्ट पा रहे हैं, मेरे ही अंश हैं, इतना कष्ट पा रहे हैं, क्यों ना इनके लिए कुछ किया, तब चैतन्य महाप्रभु का अवतार होता है नीचे। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र ठाकुर जी लेकर आते हैं साथ में, लो गाओ इसको, चलो धाम में, चलो वापस, यहां क्यों सड़ रहे हो बैठकर। तो ये मूलभूत सिद्धांत, इसकी आवश्यकता समझने की बहुत जरूरी है। यत्र तत्र अन्यत्र शास्त्रों में भी, जैसे ब्रह्म संहिता में इसी बात की पुष्टि फिर दोबारा से की गई है। ब्रह्मा जी को जब ज्ञान हुआ, तेने ब्रह्म हृदा आदि कवये, केवल बांसुरी के शब्द से सारे के सारे शास्त्रों का ज्ञान ठाकुर जी बोले नहीं है, हृदय में वैसे ही प्रकाशित कर दिया। बोलने की आवश्यकता नहीं है, इतने समर्थ हैं, समर्थ इतने हैं भगवान कि उनको मुख खोलने की आवश्यकता नहीं है। बांसुरी बजा दिए और बांसुरी में जो शब्द निकला है वही ब्रह्मा जी के हृदय में पहुंचा और वही विस्तरित होकर चतुश्लोकी भागवत के रूप में, एहम अहम एवासमेवाग्रे न अन्यत, चतुश्लोकी भागवत जो ठाकुर जी ने दी है केवल बांसुरी के शब्द से। ये सामर्थ्य है, देखिए इस सामर्थ्य से ही व्यक्ति क्यों ना ठाकुर जी का कायल हो जाए, बताइए क्यों नहीं हो जाएगा। तो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक बोला गया है बहुत सुंदर, यही जगत सृष्टा ब्रह्मा जी की वाणी है कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य तच्चेष्टते सा गोविंद आदिपुरुषम तमहम भजामि। केवल एक छाया के द्वारा, दुर्गा छाया ही तो है बहिरंग प्रकृति, बोले इसी से ही मैं कर देता हूं सारे काम, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, ये है सामर्थ्य। और जगह पे कह रहे हैं ऐसी वाणी है ब्रह्मा जी की, एकोप्यसो रचयितुम जगदंड कोटि, एकोप्यसो यक्षत्तिरस्ति जगदंड छयाय दंत, कहां कहां विद्यमान हूं, अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्त गोविंदमादि पुरुषोत्तम। तो ये ऐसे ऐसे लोगों का मत है जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी चतुर्मुखों से हमेशा वेदों का ही वर्णन करते रहते हैं, मुखों से यही गायन कर रहे हैं। ब्रह्मा बोले कि चतुर्मुखी कृष्ण कृष्ण हरे हरे और महादेव पंचमुखी राम राम हरे हरे। तो ये ऐसे लोग हैं जिनका मत ऐसा है कि श्री कृष्ण ही मूलभूत रूप से अभिन्न रूप से निमित्तोपादान कारण के रूप में विद्यमान है। अच्छा, अब ये बात तो पूरी हो गई, लेकिन इससे और भी एक महत्वपूर्ण बात है कि ठीक है ये बात पता लग गई कि ठाकुर जी विद्यमान है पूरी तरीके से। अब जो नारद मुनि जो बात कर रहे हैं, यथा तरोर मूल निशीचनेन, तृप्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा। अब वो कैसे होगा? आपको अगर ये बात समझ में आ गई है कि ठाकुर ही हर किसका, श्री गोविंद ही हर किसी के मूल स्रोत हैं, इन्हीं को प्रसन्न करने से ही हमें आनंद की प्राप्ति होगी, तो अब इसका उपाय भी भागवतम में बहुत सुंदर तरीके से दिया गया। वही सप्तम स्कंद के अंदर जब प्रहलाद महाराज पढ़ के आए दूसरी बार, हाँ, तो हिरण्यकश्यपु ने फिर पूछा, बोले बच्चा तुम्हारे गुरुजी ने तुमको सबसे अच्छी बात जो सिखाई है वो बताओ। प्रहलाद महाराज हाथ जोड़े आंख बंद किए और एक ही श्लोक बोले, क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। बोले पिताजी ये मूलभूत है, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो इन्हीं का श्रवण करो, इन्हीं का कीर्तन करो, इन्हीं का स्मरण करो, इन्हीं का अर्चन करो, इन्हीं का वंदन करो। समग्र रूप से कहा जाए तो बोले अपना पूरा जीवन इन्हीं को दे दो, बस आपका काम पूरा बन जाएगा। यही बात फिर सुखदेव गोस्वामी शुरुआत में कह रहे हैं, क्या? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। क्या करने योग तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यस् कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छतादम। बोले भगवान हरि ही सभी जीवों के सर्वात्मा, सबके आत्मा के रूप में विद्यमान है, इन्हीं का ही श्रवण, इनका कीर्तन, इनका स्मरण ही वास्तविकता में जीव का कल्याण करने लायक है। परम कल्याणकारी श्री कृष्ण का भजन इनका कारण। बोले ये करना, इसमें जो लिखा हुआ है ना सिंचनेन, ये शब्द का वास्तविकता में अर्थ बोला जाता है भक्ति। यथा तरोर मूल निसिंचन, सिंचन कैसे करोगे? बोले भजन के द्वारा करोगे ना। जब हरे कृष्ण महामंत्र जपोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब इसको बहुत ध्यान पूर्वक, हाँ, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, जब मुख से निकलेगा और सीधा कान में जाएगा भावपूर्वक। एक साधु तो बात बोले इतनी सुंदर, बोले भाव ही सर्वस्व है और भाव ही आधार है। केवल भाव होना चाहिए क्योंकि भावग्राही जनार्दन है। भाव ही सर्वस्व है और भाव ही आधार है, और भाव से भजले उसे तो भव से बेड़ा पार है, पार हो जाएंगे आप सीधे सीधे। तो ये होगा जब आप बहुत ध्यान पूर्वक ये भक्ति के जो अंग हैं, सिंचन करने के जो अंग हैं, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इनका जब ध्यान पूर्वक अपने जीवन में अंगीकार करके इनका पालन करना जब शुरू करेंगे ना, तो अपने आप आपकी भक्ति लता ऐसे बढ़ जाएगी कि आपको अंतर हृदय से ही आनंद महसूस होने लग जाएगा। ये नाम इतना प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली है कि इसके बारे में कहा जाता है कि अगर स्वयं ठाकुर जी से भी पूछ लिया जाए ना कि आप एक बार आओ, आप व्यासासन पे बैठो, हाँ, और आपसे हम बोलते हैं कि आप थोड़ा अपने नाम की महिमा का वर्णन कर दो, थोड़ा सा भगवान के सामर्थ्य की बात नहीं है कि अपने नाम के बारे में कुछ बोल सकें। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं का नाम गुण गाई। बोले कहाँ तक कहूँ नाम की बढ़ाई, राम को कह दिया जाए कि अपने नाम की महिमा थोड़ा कर दो, संभव नहीं है, नहीं है संभव इस बात का। इसीलिए नाम को पकड़ के रखो बिल्कुल जीवन में ये, क्योंकि कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नाम महाराज की प्रतिज्ञा है, नाम महाराज कह रहे हैं, बोले तुम मुझे साध लो पूरे जीवन में, किसी तरीके से मुझे साध लो पूरे जीवन में, मेरी प्रतिज्ञा है जीवन के अंत में मैं तुम्हें साध लूंगा, तुम्हें साध लूंगा मैं, मेरी प्रतिज्ञा है। तो नाम के अंदर सब चीज विद्यमान है, बस हमारा विश्वास होना चाहिए, ध्यान पूर्वक नाम जप करें और इतना इसके प्रति श्रद्धा रखें कि केवल नाम जप से ही हमारा सारा कल्याण हो जाएगा। आप देखिए, एक बहुत विशेष बात है, जो लोग पूर्ण रूप से भक्ति में लगे हुए हैं ना, यथारूप से सुखदेव गोस्वामी हुए, हनुमान जी महाराज हुए, शिव जी हुए, बोले इनके जीवन में देखो क्या प्रधान है। शिव जी के जीवन में देखो प्रधान क्या है, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जप हूँ अनंग राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जप हूँ अनंग राती। क्या काम है, केवल राम राम, पांचों मुखों से एक ही काम कर रहे हैं। इतनी विषमता में रहते हैं ना शिव जी, अगर उनके जीवन का थोड़ा अवलोकन कर लिया जाए, इतनी विषमता में है। देखिए स्वरूप को ही देख लीजिए आप उनके, माथे के ऊपर जटाओं में गंगा जी विद्यमान है, यानी कि जल विद्यमान है। हाँ, थोड़ा सा नीचे आओ, तीसरा नेत्र है, अग्नि विद्यमान है। जल और अग्नि दोनों विषम वस्तुएं हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आओ, बोले कंठ में सर्प की बाला है, पर इनके पुत्र हैं गणेश जी, उनका वाहन है चूहा, विषमता। एक और पुत्र है कार्तिकेय, उनका वाहन है मयूर। अब चूहा हमेशा डरता रहता है कि सांप कहीं गले से नीचे ना उतर जाए, अगर ये नीचे उतरा तो हम ऊपर जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन कार्तिकेय जी का जो वाहन है मयूर, वो कहते हैं तो चिंता क्यों करते हो, हम है ना, उतरे तो सही सांप नीचे, एक बार हम देखते हैं। तो विषमताएं देखिए कितनी है, हा? ऐसी विषमताओं में भी किसी ने प्रश्न कर दिया शिवजी से कि आप इतने, आज की भाषा में बोले बोले, आप इतने कूल कैसे रहते हो, ऐसे इतने आनंद में कैसे रहते? बोले मेरे को एक गोली पता है। शिवजी बोले बोले मेरे को एक गोली पता है क्या है। बोले क्या? बोले गोली यही है, राम नाम की गोली लेता रहता हूँ, हमेशा कुसंग से दूर रहता हूँ और सत्संग में रहता हूँ हमेशा, साधु लोग के साथ। साधु लोग मेरे हमेशा बैठे रहते हैं, और जब होती है चर्चा, श्री राम की चर्चा होती है, मुख से नाम चलता रहता है। बोले ये गोली खाते रहो, ये सबके लिए निर्देश यही है। बोले कुसंग के परहेज से बच जाओ, हाँ, और राम नाम का जो औषधि है उसको लेते रहो। अगर ये दोनों काम कर लोगे ना, तो जीवन से निश्चित रूप से ऊपर निकल जाओगे, बाहर इस जगत से बाहर निकल जाओगे पूरा। दो काम ही करने हैं बस, कुसंग को। हमारी बस इतनी सी गलती हो जाती है कि हम सत्संग तो जरूर करते हैं, पर कहीं ना कहीं किसी रूप में कुसंग भी साथ में चलता है। तो ये जब होगा, दोनों साथ में चलने से काम नहीं चलेगा, आपको कुसंग को छोड़ना पड़ेगा और सत्संग को बढ़ाना पड़ेगा। तो कुसंग का परहेज कीजिए और सत्संग की औषधि लेते रहिए। तो ये जब करना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आपका कार्य बन जाएगा। आप इस त्रिविध, ये तो त्रिगुणमयी माया है, मम माया दुरत्यया, इससे आप आराम से बाहर निकल सकते हैं। ये इस सिंचने ने जो भक्ति का जो प्रोसेस जो है, श्रवणम कीर्तनम का, उसका ये जिस्ट है बिल्कुल। क्योंकि श्रीमद् भागवतम का जो अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व व्याधि विनाशनम, प्रणामम दुख शमनम तम प्रणामम हरि प्रणम। तो क्या नाम संकीर्तन से ही हो रहा है सब कुछ? नाम संकीर्तन जो करे व्यक्ति, आप देखिए नारद जी जहां पर जाते हैं, नारद मुनि बजाए बीणा राधिका रमण नामे, जहां जा रहे हैं यही काम। सनत कुमार हरि शरणम हरि शरणम, आप भागवत महात्म्य पढ़िए, लिखा हुआ है उसके अंदर। सुखदेव गोस्वामी के बारे में क्या बोल रहे हैं, बोले जिन्होंने श्रीमद् भागवतम व्यासदेव से पढ़ी, और ऐसे व्यक्ति हैं सुखदेव गोस्वामी, बोले जब ये चलते हैं ना, भागवतम में इनका विशेषण आया बहुत सुंदर, कि प्रेमणा पठन भागवतम शने शने, बोले जब चलते, एक एक पग जब रखते हैं जमीन के ऊपर, तो इनके रोम रोम से श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का उच्चारण होता है। ये सुखदेव गोस्वामी, हनुमान जी जैसे व्यक्ति, हाँ, राम कथा के मर्मज्ञ, इनके बारे में क्या बोला जा रहा है? इनके बारे में एक चीज बहुत सुंदर बताई गई है, बोले राम नाम तो हमेशा लेते हैं पर ऐसे साधारण नाम नाम नहीं लेते। यद रोम कूपे ध्वनिमन लसन्नम श्री राम जय राम जय जय राम। यद रोम कूपे, बोले रोम कूप से ध्वनि निकलती है, क्या? श्री राम जय जय राम। ये हनुमान जी की विशेषता। तो जितने भी ये बड़े बड़े आचार्य गण हैं, इन्होंने यही प्रतिपादित किया सिद्धांत सीधा सीधा, बोले नाम को पकड़ लो, बस नाम को पकड़ के रखोगे हरि ऐसे ही आ जाएंगे सामने तुम्हारे, क्योंकि नाम में रूप भी विद्यमान है, गुण भी विद्यमान है, धाम भी विद्यमान है, लीला भी विद्यमान, सब कुछ तो नाम के अंदर। एक साधु तो पता है क्या बोले, बहुत सुंदर बात, इतनी गूढ़ बात बोल दी है, बोले नाम जानते हो नाम है क्या? नाम का वास्तविक अर्थ होता है निवृत्त निकुंज। निकुंज शब्द तो सुना होगा आपने, हाँ, परंतु नाम का वास्तविक अर्थ निवृत्त निकुंज है। ये रसिक शिरोमणि लोग जो है वो, उनकी कल्पना वहां तक जाती है फिर, कि नाम में ही सब कुछ विद्यमान है, नाम में ही श्रीमती राधा रानी भी है, नाम में ही पूरा परिकर विद्यमान है, नाम में पूरा गोलोक वृंदावन विद्यमान है। तो क्यों ना बुद्धिमानी पूर्वक केवल नाम को पकड़ लो, बस नाम को पकड़ा नहीं है आपने, आपका काम हुआ नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्रीवास पंडित का तिरुभाव दिवस भी है, तो मुझे कहा गया था थोड़ा आप वो चर्चा भी कर लीजिएगा। वैसे तो ये टॉपिक अभी पूरा हुआ नहीं है, मैं और इस पर बोल सकता था, परंतु समय की परिधि है, तो उसको देखते हुए मैं 5 मिनट श्रीवास पंडित के बारे में भी बोल देता हूँ। सबको विदित है श्रीवास पंडित पंच तत्वों में एक बहुत प्रमुख स्थान रखते हैं, और इनके बारे में श्रील गौड़ गणोदेश दीपिका के अंदर वर्णन किया गया है कि श्रीवास पंडितो धीमान यह पूरा नारद मुनि। ये पूर्व में जो नारद मुनि है वो ही श्रीवास पंडित के रूप में इस कलिकाल में जीवों का उद्धार करने के लिए पंच तत्व के एक तत्व बनकर आए। आश्रयामी श्रो श्रीवासम तमाद्यम पंडितम मुदा शुक्लाम्बर धर्म गौरम गौर भक्ति प्रदायकम। अगर इनका आश्रय लिया जाए, क्योंकि नारद मुनि जो है वो भागवत धर्म के आचार्य हैं, भागवत धर्म को जितना प्रचार नारद मुनि ने किया है मैं नहीं समझता किसी और ने किया होगा। ऐसे स्तंभ के रूप में विद्यमान है ना, जो भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को भी, जो कि लेटे हुए हैं बिल्कुल, जिनमें कोई ताकत नहीं है, जो उनको उठा सकते हैं भागवत धर्म के द्वारा, हाँ, तो ऐसे व्यक्ति का क्या कहना बताइए। तो यही नारद मुनि श्रीवास पंडित के रूप में इस धराधाम में पंच तत्व के एक तत्व के रूप में आए, और इनके पिताजी का नाम जलधर, श्री जलधर था, हाँ, श्रीहट में रहते थे और श्रीहट से नवद्वीप में रहने आए, और इनके 4 भाई और थे, श्री नलिन, श्री राम, श्री पति और श्री निधि। इनका श्रीमन महाप्रभु के साथ बड़ा अच्छा मैत्री संबंध है। श्रीमन महाप्रभु जब नदिया के अंदर विचरण करते हैं, पढ़ाते हैं, जब अपना ही टोल खोल रखा है और विद्यार्थियों को जब पढ़ाते हैं, 6-7 विद्यार्थियों को लेकर घूम रहे हैं, बहुत सुंदर वर्णन, इतना सुंदर स्वरूप है श्री गौरहरि का, हाँ, तप्त कांचन गौरांग, ऐसा सुंदर स्वरूप है, इतनी सुंदर सुंदर अलकावली है, मस्तक पर केसर तिलक लगा हुआ है, सिर्फ एक धोती पहने हैं और एक चादर ऊपर उठाए हैं, बस तिलक लगे हुए हैं और एक दूसरे को बात करते हुए, किसी को इधर छेड़ रहे हैं, किसी को इधर छेड़ रहे हैं, बातचीत करते हुए चल रहे हैं, तो सामने से श्रीवास पंडित आ रहे हैं। तो श्रीवास पंडित गौरहरि से पूछते हैं, बोले उद्यत शिरोमणि, ऐसे बोले, बोले हे उद्यत शिरोमणि, आज कहाँ पधार रहे हो, हाँ, बोले भजन के बिना कहाँ काम बिगाड़ रहे हो, तो भजन तो कर नहीं रहे, तो इधर से उधर घूम रहे हो। बोले रात दिन जाने किस किस को पढ़ाते पढ़ाते रहते हो इधर उधर। देखो शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है कृष्ण भक्ति करना। श्रीवास पंडित बता रहे हैं, बोले तुम इतनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, इसका वास्तविक अर्थ है कि व्यक्ति को भजन में लग जाना चाहिए। तो गौर हरि कहते हैं जब आपकी कृपा होगी ना तब हम भजन में लग जाएंगे। तो विनम्रता है देखिए ठाकुर जी की, इतनी विनम्रता है। तो अब ऐसे वार्तालाप चलता है इनके साथ। अब जब महाप्रभु गया से वापस आ गए, अब इतने गंभीर हो गए, पूरा स्वरूप ही बदल गया उनका जब दीक्षा ले लिए। और कृष्ण नाम सुनते ही पुलक रोमांच अश्रुकंप धार हृदय से उनके शरीर से निकलने लग जाती है। तो जब ये बात श्रीवास पंडित को पता चली, क्योंकि श्रीवास पंडित चाहते थे कि ये व्यक्ति अगर कृष्ण भक्त बन गया ना, पूरा नदिया कृष्ण भक्त बन जाएगा, पूरा जगत कृष्ण भक्त बन जाएगा। उनको इस बात की ग्लानी रहती थी कि ये कभी कृष्ण भक्त बने थोड़ा, इतना सुंदर स्वरूप है, हाँ अगर ये व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र ले सड़कों पे, तो क्यों नहीं लोग इसकी तरफ आकृष्ट हो जाएंगे। तो जीवों का कल्याण तो वैसे ही हो जाएगा, देख देख के कल्याण हो जाएगा सर। उनके मन में ग्लानी रहती थी इस बात की। तो जब गया से वापस आए तो श्रीवास पंडित को पता लगा कि अब महाप्रभु बहुत गंभीर हो गए। ये नदिया के निमाई जो हैं अब वो निमाई नहीं रहे जो पहले चलते चलते किसी को ऐसी छेड़ देते थे। हाँ ब्राह्मण नदी में स्नान कर रहे हैं तो नीचे जाके धोती खींच देते थे, तो ऐसी विचित्र हरकतें हैं, कोई कह ही नहीं सकता कि ये भगवान है। जैसे कृष्ण करते हैं ना ऐसे सेम चीज़। परंतु जब पता लगा उनको कि इतने गंभीर हो, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई हृदय। बोले गौर हरि भक्त बन गए, कृष्ण भक्त बन गए, आज मेरे हृदय को बहुत आनंद मिल रहा है, वास्तविकता में आनंद मिल, ऐसा व्यक्ति भक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर एक वर्णन है इस प्रकार से, बोले श्रीवास पंडित के घर पे ना कनेर का एक वृक्ष था, उसमें 12 वर्ष फूल आते रहते थे, जितने तोड़ लो उतने फिर आ जाते थे। तो कुछ भक्त लोग आए पूजा करने के लिए, फूल चुनने के लिए। तो उनको जब श्रीवास पंडित के घर पे आए तो श्रीवास पंडित को जब पता लगा कि कृष्ण भक्त गौर हरि बन गए, बोले ले जाओ जितने ले जाने ले जाओ, मैं तो चाहता यही था, कब से वेट कर रहा था कि ये व्यक्ति बने तो सही भक्त, ये बना तो समझ लो काम बन गया सबका। तो बहुत पूजा उनकी अर्चना की है बहुत सुंदर। और श्रीमन नित्यानंद प्रभु भी श्रीवास पंडित के यहाँ पर ही रहते थे ज़्यादातर, लेकिन अवधूत हैं, बिल्कुल अवधूत हैं। एक बार गौरहरी ने कहा श्रीवास पंडित से कि श्रीवास ये तुम अवधूत को अपने घर में क्यों बिठाए रखते हो, हैं बोले इसकी जाति तुम्हें पता नहीं है, ये कहाँ से आया है, हैं ऐसी तुम किसी को भी घर में रख लेते हो। परीक्षा लेने के लिए कहा वैसे उनसे कि देखें श्रीवास पंडित क्या कहते हैं। तो श्रीवास पंडित कह रहे हैं, बोले महाराज हमारी परीक्षा लेना चाहते हो आप, मैं वास्तविकता में जानता हूँ कि आप एक प्राण दो देह हो, नित्यानंद और गौरांग गौरांग में कोई अंतर नहीं है, अगर मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ तो समझ लीजिए आप ही की सेवा हो रही है। हाँ तो गौरहरी बहुत प्रसन्न है, बोले मैं समझ गया कि आप वास्तविकता में नित्यानंद को जान गए कि हैं कौन, ये मेरा धन है, हाँ इनकी खूब अच्छे से सेवा करना, यहीं रखो। तो ऐसे करके नित्यानंद प्रभु वहीं रहते, मालिनी देवी उनको बिल्कुल वात्सल्य रूप में, नित्यानंद प्रभु तो ऐसे थे कपड़ा ही नहीं पहनते थे, इतने बड़े हो गए कपड़ा ही ना पहने। हाँ और मालिनी देवी अपने हाथ से भोजन खिला रही हैं, अपने हाथ से भोजन खिलाती नित्यानंद प्रभु को, ऐसा वात्सल्य। तो ऐसो वात्सल्य मिलेगा तो कौन कौन छोड़ के चले जाओगे बताओ, तो जाएगा छोड़ के, ऐसे पड़ा रहेगा वहीं पर ही आराम से। अब किसी को आराम से भोजन मिल रहा है, खूब सोने को मिल रहा है अच्छा है, कोई काम करने को मिल नहीं रहा, आराम से पड़ा हुआ है बस, हाँ सारी सुविधाएं मिल रही, तो कौन छोड़ के जाएगा बताओ। ये तो बात कह रहा हूँ वैसे, एक बात कह रहा हूँ वैसे, परंतु वास्तविकता ये है कि नित्यानंद प्रभु तो नित्य आनंद में है, उनको तो अपने शरीर का भान ही नहीं रहता था, कपड़ा पहना है नहीं पहना है कोई फर्क नहीं, नहाए या नहीं नहाए वैसे, बैठे हैं आराम से। तो मालिनी देवी वात्सल्य रूप में इतनी सेवा करती थी। हाँ, और श्रीवास पंडित की एक छोटी भतीजी, उनका नाम नारायणी, 4 वर्ष की, गौरहरी आते थे। तो गौरहरी ने देखा एक छोटी सी बच्ची है, बोले नारायणी कृष्ण कहो, और इतना ही कहा नहीं कि वो तो कृष्ण कृष्ण कहती नाचने लग गई पूरा। और इसके अष्ट सात्विक विकार 4 साल के बच्चे के अंदर किसकी कृपा है? गौरांग महाप्रभु की कृपा है। तो यही नारायणी देवी के आगे चल के पुत्र हुए वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य भागवत का सृजन किया है। इतना सुंदर ऐसा स्वरूप है गौरांग महाप्रभु का। और श्रीवास पंडित का आंगन ही इस हरे कृष्ण आंदोलन का शुरुआत बना है। पहले तो गौरहरी अपने घर पे थोड़ा बहुत किया करते, लेकिन बाद में फिर श्रीवास पंडित के घर पर करना शुरू किया। वहां पर किसी को अलाउड नहीं अंदर आना। एक बार सास आ गई श्रीवास पंडित की वहां पर, देखूं तो सही यहां होता क्या है, आके टोकरी के अंदर बैठ गई। अब गौरहरी नाचे हैं शाम को, रात के समय में खूब मृदंग करताल इतना तेज बज रहे हैं, और गौरहरी थोड़ा नाचने के बाद फिर ऐसे बोले, श्रीवास आज आनंद नहीं आ रहा है, आनंद आ नहीं रहा आज, क्या बात है, कोई अनाधिकारी व्यक्ति तो नहीं प्रवेश किया? अब श्रीवास जाए पूरे घर के अंदर फिर देखें, बोले महाराज यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर मृदंग करताल बजे खूब तेज, अब थोड़ा सा गौरहरी नाचे, फिर चुपचाप बैठे, बोले श्रीवास आनंद नहीं, कुछ तो बात है आज। अब दोबारा से श्रीवास जब गए देखने, तो देखे वो ध्यान से देखे थोड़ा, वो टोकरी के अंदर वो छुपी बैठी सास। आप देखो गौरहरि के प्रति इतना उनका लगाव है कि अपने परिजनों से भी मर्यादा में व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस बात को श्रीवास पंडित ने नहीं देखा। वहां पर लिखा हुआ, बोले बालों से पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर निकाल दिया। बोले तो अन्य अधिकारी तो अंदर घुसी कैसे, तेरा मतलब ही नहीं यहां पर रहने का। गौरांग महाप्रभु के आनंद में विघ्न डालने वाला व्यक्ति सर्वथा त्याज्य है, अंदर नहीं आ सकता है। और तब उसके बाद जब गौरहरि नाचे, उत्तंड कीर्तन, तुमुल कीर्तन, ठाकुर जी उछलते थे तो ऐसा लगे धरती फट जाए, और गिरते थे ऐसा तो ऐसा लगे रंग टूट जाए। अद्वैताचार्य के साथ, अद्वैताचार्य के बारे में भी ऐसी बताए, बोले अद्वैताचार्य इतने थोड़ा सा हैवी थे, थोड़ा वजन अच्छा था, बोले लेकिन वो भी जब कीर्तन में उछल जाते ना तो 4-4 फीट ऊपर ऐसे उछल जाए बिल्कुल। ये लक्षण ऐसे यही लोग प्रकट कर सकते हैं सामने। तो गौरांग महाप्रभु के ये इतने प्रिय पार्षद, एक बार इनका बेटा मर गया, अब पूरे घर के अंदर इतना शोक का माहौल। ये गए वहां पर, बोले खबरदार कोई रो गया तो रोना नहीं चाहिए कोई सा भी, अगर कोई रोया, क्योंकि रोने से तो गौरहरि के आनंद में विघ्न पड़ जाएगा। गौरहरि का आनंद तुम्हारे रोने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में रो लेना कोई बात नहीं। अब रोना रुकता है किसी का, किसी घर में कोई मृत्यु हो जाए तो, वो भी स्त्रियों का खासकर, आंख पे ही आंसू धरे रहते हैं हमेशा, जरा कुछ बोला नहीं और टपक गए। अब श्रीवास पंडित आए तो सही, अब खूब तुमुल कीर्तन हो रहा है, परंतु किसी ना किसी तरीके से बात तो पहुंच ही गई महाप्रभु के कान में। अब महाप्रभु पहुंचे वहां पर, तो लेटा हुआ बच्चा मरा, बोले तुम लेटे बच्चो उठो, क्यों तुम छोड़ के चले गए? बोले महाराज इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा बताइए। हाँ, श्रीवास पंडित का घर, हरे कृष्ण महामंत्र का उदंड कीर्तन, आप जैसा व्यक्ति अखिल है ब्रह्मांड नायक के आंगन में नाच रहा है, और मेरे कानों में हरि नाम की ध्वनि पड़ रही है, और मैं शरीर छोड़ रहा हूं, तो मेरे को सबसे उत्तम गति नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा मुझे, इसलिए मैं शरीर छोड़ रहा हूं। बोले रह जाओ। बोले नहीं महाराज, बस इतना ही बहुत है, बस इतना प्रार्थना है आपसे, कभी अगर जन्म लूं तो आपके परिकरों के घर पे जन्म लूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, मतलब कीड़ा बना दो कोई बात नहीं, भक्त की नाली का बना दो। तो ऐसे श्रीवास पंडित, ये इतने मुख्य तत्व हैं, नारद मुनि ही स्वयं बन के आए और इनकी शरण ग्रहण करने से महाप्रभु की कृपा अतिशय आसानी से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, समय हो, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद।